21 मई दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। ईवीएम को लेकर विपक्ष की दिल्ली में बैठक, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी चुनाव आयोग को क्लीन चिट।
आप पहले तो वो जो पांच एक विधानसभा में पांच वोटिंग स्टेशन की जो पांच महीने गिनोगे वो सबसे पहले गिनोगे।
देखेंगे श्रीलंका में हुई हाल की हिंसा में वहां के जटिल ताने बाने को कितना पहुंचा है नुकसान।
Recent incidents, the repercussions rather, which took place in Minuangoda.
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले विपक्षी दलों के एक समूह ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है और वोटों की गिनती को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। विपक्षी दल चाहते हैं कि चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि ईवीएम से किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो। सोशल मीडिया पर कई वीडियो क्लिप शेयर किए गए हैं जिनमें ईवीएम वाहनों में दिख रही है। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज किया है। एग्जिट पोल सत्ताधारी बीजेपी की आसान जीत दिखा रहे हैं। इंडोनेशिया में बीते महीने हुए चुनावों के आधिकारिक नतीजों में राष्ट्रपति जोको विडोडो फिर से निर्वाचित हुए हैं। तनाव की आशंका के चलते चुनाव आयोग ने तय तिथि से एक दिन पहले ही नतीजे घोषित कर दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजधानी जकार्ता में हजारों सैनिकों को तैनात किया गया है। सेना के पूर्व जनरल और मुख्य विपक्षी उम्मीदवार प्रोबोवो सुबियांतो के समर्थकों ने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। विपक्ष ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग ने सभी आरोप खारिज किए हैं। जीत की घोषणा करते हुए विडोडो ने कहा कि वो सभी इंडोनेशिया वासियों की रक्षा करेंगे। वहीं सुबियांतो नतीजों को अदालत में चुनौती देने वाले हैं। उन्होंने नतीजों को खारिज करते हुए कहा,
कामी पिहक पसलोन 02 मनोलक।
मैं राष्ट्रपति उम्मीदवार संख्या 2 21 मई को चुनाव आयोग की ओर से जारी सभी नतीजों को खारिज करता हूं। राष्ट्रपति उम्मीदवार संख्या 2 को ये भी लगता है कि वोट संग्रह की घोषणा अजीब समय में की गई है जो कि असामान्य स्थिति है। ये थे राष्ट्रपति पद के मुख्य विपक्षी उम्मीदवार प्रोबोवो सुबियांतो। भारत प्रशासित कश्मीर में एक मानवाधिकार समूह ने सेना के हाथों उत्पीड़न के कथित सैकड़ों मामलों की संयुक्त राष्ट्र से जांच करवाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर कोलिएशन ऑफ सिविल सोसाइटी का कहना है कि मारे गए 432 पीड़ितों में से 40 की मौत उत्पीड़न की वजह से हुई थी। उत्पीड़न के कथित तरीकों में बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, मारपीट, पानी में डुबोना और जननांगों में बिजली के झटके लगाना शामिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अधिकतर पीड़ित आम नागरिक थे। भारतीय सेना पर कश्मीर घाटी क्षेत्र में उत्पीड़न के आरोप लगते रहे हैं। भारतीय अधिकारियों ने बीबीसी से कहा है कि कोई भी टिप्पणी करने से पहले वो इस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। विद्रोह के आरोपों में मुकदमे का सामना कर रहे 5 कैटलन अलगाववादी नेताओं ने नवनिर्वाचित संसद सदस्य के तौर पर शपथ लेते हुए स्पेन के संविधान के प्रति निष्ठा जाहिर की है। उन्होंने शपथ के बाद संक्षिप्त बयान भी दिया जो शोर शराबे में कहीं दब गया। इन्हें शपथ ग्रहण के लिए जेल से लाया गया था। जब वो चैम्बर में आए तो कुछ ने उनका स्वागत किया और कुछ ने उन्हें बाहर निकालने के नारे लगाए। संसद प्रशासन इनमें से 4 डिप्टियों को निलंबित कर सकता है। 5वें नेता एक सीनेटर है। इन सभी पर कैटलोनिया की आज़ादी के लिए जनमत संग्रह कराने और कैटलोनिया को स्वतंत्र देश घोषित करने में भूमिका निभाने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि वो 7,000 प्रमुख विदेशी निवेशकों के देश में स्थायी निवास का अधिकार देगा। निवेशकों ने संयुक्त अरब अमीरात में कुल 27 अरब डॉलर का निवेश किया है। आमतौर पर विदेशियों को 1 साल तक वीज़ा ही दिया जाता है जिसका हर साल नवीनीकरण कराना होता है। सरकार ने निवेशकों को स्थायी निवास देने का कदम अर्थव्यवस्था की मदद करने के लिए उठाया है। तेल के दामों में आई गिरावट की वजह से यूएई की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हुई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग को निर्देश के बावजूद ईवीएम में गड़बड़ी का विपक्ष का आरोप आज भी जारी रहा और इसे लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने दिल्ली में बैठक भी की। दूसरी तरफ जगह जगह से ईवीएम लेकर जा रहे वाहनों और ईवीएम में हो रही खुली धांधली के नाम पर वीडियो सोशल मीडिया पर घूमते रहे। जहां विपक्ष सरकार के खिलाफ किलाबंदी कर रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज रात सहयोगी दलों को भोज पर बुलाया है। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
22 विपक्षी दलों के नेता सुबह सुबह दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जमा हुए और वहां विचार विमर्श के बाद कोई आध किलोमीटर दूर स्थित चुनाव आयोग का रुख किया, जहां उन्होंने आयोग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में एक ज्ञापन सौंपा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा,
आज हमने दो तीन चीजें मोटी मोटी बताई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो अनुमति दी है कि हर विधानसभा में रैंडम 5 ईवीएम की मशीनों के जो वीवीपैट है स्लिपें वो गिननी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसमें निकाला है जो ऑर्डर, उसमें कहा है कि पहली काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद वीवीपैट जिन्हें वीवीपैट गिने। हम लोगों ने कहा भाई इस राजनीतिक दलों में नहीं, आप पहले तो वो जो पांच एक विधानसभा में 5 पोलिंग स्टेशन की जो 5 महीने गिनोगे वो सबसे पहले गिनो।
विपक्ष की मांग है कि अगर वीवीपैट पर्ची और ईवीएम की गिनती में समानता नहीं पाई जाती है तो पूरी विधानसभा के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए। आयोग ने विपक्ष से कहा है कि वो इस मामले पर कोई फैसला कल सुबह तक लेगा। इस बार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर देश भर में वीवीपैट और ईवीएम के वोटों की मैचिंग की जा रही है। विपक्षी दल इस आग्रह के साथ देश की सबसे ऊंची अदालत में गए थे कि कम से कम 50% वीवीपैट और ईवीएम के रिजल्ट्स की मैचिंग की जानी चाहिए, लेकिन आयोग के इस तर्क के इससे नतीजे आने में कम से कम 4 या 5 दिन लग जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि हर विधानसभा में 5 वीवीपैट और ईवीएम के वोटों की मैचिंग की जानी चाहिए। पहले हर विधानसभा में एक एक वीवीपैट की ही गिनती होती थी। चुनाव आयोग ने कहा कि इसकी वजह से नतीजे आने में कई घंटों की देरी हो सकती है। चुनाव आयोग ने उन वीडियोस को भी सिरे से खारिज किया है जिसमें कथित तौर पर ईवीएम ले जाते हुए दिखाए गए थे। विपक्ष द्वारा ईवीएम को लेकर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार में मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा,
ईवीएम को लेकर अनावश्यक तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो उनकी हताशा है, वो अपने हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं। इसी ईवीएम से जब कांग्रेस पार्टी जीते राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो ईवीएम ठीक है। इसी ईवीएम से जब ममता जी बने 2 बार मुख्यमंत्री, अमरिंदर सिंह बने पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो ईवीएम ठीक है। इसी ईवीएम से जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने और मायावती जी 2007 में यूपीएफ के मुख्यमंत्री बने यूपी की तो ईवीएम ठीक है। इसी ईवीएम से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो ईवीएम ठीक है। तो जब वो जीते तो ईवीएम ठीक है। अगर हमारे जीतने का अनुमान हो क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बना जाती है तो ईवीएम गड़बड़ है। इससे अधिक अस्तरहीन, बेबुनियाद और हास्यास्पद बात कोई हो नहीं सकती।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ईवीएम पर उठ रहे सवालों को खारिज किया। चंद दिनों पहले भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर पर नीतीश कुमार के बयान के बाद सियासी हलकों में कई तरह की चर्चा थी, लेकिन नीतीश के इस बयान ने कम से कम उसे कुछ वक्त के लिए विराम दे दिया है। आज ये चर्चा भी गर्म रही कि नीतीश कुमार अमित शाह के रात के भोज में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो भी महज अफवाह साबित हुई। शाम में अमित शाह ने एनडीए गठबंधन के सहयोगियों को दिल्ली के अशोक होटल में डिनर के लिए बुलाया है। कहा जा रहा है कि ये मत गिनती के बाद पैदा हो सकने वाली स्थिति पर चर्चा करने का भी मौका होगा। हालांकि बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने बल पर 282 सीटें हासिल की थी, लेकिन फिर भी चुनाव के पहले बीजेपी अध्यक्ष ने खींचे खींचे से सहयोगी शिवसेना, अकाली दल और जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
जिस समय कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं, उसी बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चुनाव आयोग की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश में पहले चुनाव आयुक्त से लेकर अब तक के चुनाव आयुक्तों ने अच्छा काम किया है और इसी कारण देश का लोकतंत्र कामयाब हुआ है। इसके अलावा भी मुखर्जी का कौन सा बयान है चर्चा में, जानकारी दे रहे हैं आदर्श राठौर इस रिपोर्ट में।
17वीं लोकसभा के लिए मतदान खत्म हो गया है और इंतजार हो रहा है नतीजों का। इस चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाए ही, चुनाव आयोग पर भी खूब आरोप लगे। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि वो आदर्श आचार संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर नरम रहा, जबकि विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं पर सख्त रहा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो ट्विटर पर ये कह दिया था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने आयोग के आत्मसमर्पण की बात कही थी। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा कि लोकसभा चुनाव बहुत अच्छे ढंग से करवाए गए हैं।
Therefore, if we want to strengthen the institution,
अगर हम संस्थानों को मजबूत करना चाहते हैं तो ध्यान रखना होगा कि ये देश में सही से काम कर रहे हैं, और अगर लोकतंत्र कामयाब हुआ है तो इसका ज्यादा श्रेय सभी चुनाव आयुक्तों के काम को जाता है। सुकुमार से लेकर मौजूदा चुनाव आयुक्तों तक सभी की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है और वे अपना काम अच्छा कर रहे हैं, आप उनकी आलोचना नहीं कर सकते। चुनाव सही ढंग से हुए हैं।
चूंकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले वो मनमोहन सिंह की सरकार में वित्त मंत्री भी थे, ऐसे में उनका ये बयान कांग्रेस को असहज करने वाला माना जा रहा है। मोदी सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीबीआई में निदेशकों को लेकर विवाद, आरबीआई और सरकार में तनातनी की खबरें सुर्खियों में रही थीं। अब चुनाव आयुक्त लवासा की नाराजगी भी चर्चा में है। विपक्ष इन सब बातों को लेकर आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार के दौरान संस्थाएं कमजोर हुई हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने ये कहा कि देश की संस्थाएं अच्छी स्थिति में हैं।
That our institutions are fine. And these institutions you have built up over the years.
संस्थाएं दुरुस्त हैं और ये संस्थान बीते कई साल की मेहनत से बने हैं। जो कारीगर काम नहीं जानता वही अपने औजारों को कोसता है, अच्छा कारीगर जानता है कि इन औजारों का कैसे इस्तेमाल करना है।
लेकिन प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार शाम को एक बयान जारी करके कहा कि वो ईवीएम के साथ कथित छेड़छाड़ की खबरों से चिंतित हैं और ईवीएम की सुरक्षा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी संस्थाओं पर पूरा यकीन है और ये कारीगरों की जिम्मेदारी है कि औजारों का इस्तेमाल किस तरह से करना है। जीवन का लंबा हिस्सा कांग्रेस में गुजार चुके प्रणब मुखर्जी को इसी साल केंद्र सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। इससे छह महीने पहले जून 2018 में प्रणब मुखर्जी नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे थे, जहां संविधान के प्रति देशभक्ति को उन्होंने असली राष्ट्रवाद बताया था। संघ मुख्यालय के मंच से उन्होंने नेहरू और गांधी के दर्शन का पाठ भी पढ़ाया था। अब प्रणब मुखर्जी का चुनाव आयोग और अन्य संस्थाओं को मजबूत बताना कांग्रेस के लिए भले असहज करने वाला हो, लेकिन बीजेपी को उनके बयानों से राहत जरूर मिली होगी, जो पिछले कई दिनों से आलोचनाओं का सामना कर रही थी। आदर्श राठौर, बीबीसी दिल्ली।
2019 का सबसे अहम दिन 23 मई।
इस दिन तय होगी अगली सरकार।
देश को मिलेगा नया प्रधानमंत्री।
मोदी लौटेंगे या फिर कोई और आएगा।
एनडीए की ज्यादा सीटें आएंगी या यूपीए की।
उत्तर प्रदेश में महागठबंधन कितनी सीट जीतेगा।
बंगाल से क्या जनादेश निकलेगा।
इन सभी सवालों के जवाब, चुनावी नतीजे और सटीक विश्लेषण बीबीसी हिंदी रेडियो पर
शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे तक पूरे 2 घंटे का विशेष कार्यक्रम दिन भर प्रस्तुत करेंगे
रूपा झा,
रेहान फजल,
राजेश जोशी
और सुशीला सिंह।
बीबीसी हिंदी रेडियो फेसबुक और यूट्यूब पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गए। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर केदारनाथ पहुंचे मोदी, वहां एक गुफा में भी ठहरे। इसके बाद से ये गुफा चर्चा में है। क्या है इस गुफा की खासियत और क्या आम लोग भी यहां ठहर सकते हैं? भूमिका राय की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा की बहुत सी तस्वीरें वायरल हुई। तस्वीरों के वायरल होने और यात्रा के चर्चा में आने के पीछे बहुत सी वजहें रहीं। एक ओर जहां विपक्ष का कहना था कि ये यात्रा आचार संहिता का उल्लंघन है, वहीं जब करीब 17 घंटे के बाद मोदी गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। उन्होंने उन्हें 2 दिन एकांत में बिताने की अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद कहा।
मैं इलेक्शन कमीशन का आभार मानता हूँ, ये 2 दिन का विराम बीच में मिल गया।
राजनीतिक विवाद एक और, लेकिन प्रधानमंत्री के वहाँ से लौट आने के बावजूद ये गुफा चर्चा में है। लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम ने इस गुफा की बुकिंग पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। उम्मीद है कि जून में बुकिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। इस पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक बीएल राणा कहते हैं,
बुकिंग का ऐसा है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट में भी हम इसको डाल रहे हैं, ऑफलाइन भी वहाँ पे केदारनाथ पे जाके जो हमारे मैनेजर हैं वहाँ से संपर्क करते हुए ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं। मेन यह है कि जो भी साधक जाएंगे उसका पहले मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद जो है उसको तब अनुमति दी जाए।
लेकिन अगर बात सिर्फ गुफा की करें तो गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी को पढ़ने पर लगता है कि ये किसी होटल से जुड़ी शर्तें हैं। वेबसाइट पर कई जगह होटल शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के अंतर्गत आने वाली ये गुफा केदारनाथ धाम पहाड़ियों से करीब 1 किलोमीटर ऊपर है। गुफा का मुंह केदारनाथ मंदिर की तरफ खुलता है। अगर सुविधाओं की बात करें तो यहाँ बिजली पानी के साथ साथ तीनों वक्त खाने का प्रबंध है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इस गुफा में रहने के लिए कीमत कितनी चुकानी होगी। इस पर राणा कहते हैं,
अभी तो 990 रुपए रखा है और शुरुआती दौर है, उसके बाद रिस्पांस देखेंगे, लोगों का रिस्पांस के बाद डिसाइड करेंगे। पहले शुरुआत में पिछले साल हमने 3000 रुपए रखा था, बट क्योंकि उस समय प्रचार था नहीं तो इसलिए रेट को डाउन किया है। अभी सिर्फ हमारा उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे और लोग इंटरेस्ट इसमें दिखाएं।
लेकिन इस गुफा से जुड़ी जानकारियां जो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, उनमें क्या करें और क्या ना करें का जो हिस्सा है उसमें गुफा की जगह होटल और रूम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये गुफा केदारनाथ डेवलपमेंट वर्क्स के तहत बनाई गई है। पिछले साल तक तो केदारनाथ घाटी में इस तरह की एक ही गुफा थी, लेकिन इस साल एक और गुफा का निर्माण हो गया है। आने वाले समय में ऐसी ही कुछ और गुफाओं के निर्माण की योजना है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के एक अन्य अधिकारी ने हमसे कहा कि बिल्कुल सच है कि प्रधानमंत्री के गुफा में ठहरने से ये गुफा सुर्खियों में आ गई है और आने वाले वक्त में यहाँ ठहरने वालों की संख्या बढ़ेगी, जो कि अच्छी बात होगी।
भारत प्रशासित कश्मीर में आज अलगाववादियों ने कश्मीर बंद का आह्वान किया। आज ही के दिन कश्मीर के दो बड़े अलगाववादी नेता मौलवी फारूक और अब्दुल गनी लोन की हत्या की गई थी। दूसरी तरफ सेना की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि कश्मीर के युवाओं का हथियार उठाना चिंता का विषय है। इस पर क्या कहना है कश्मीर के विश्लेषकों का, सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की इस रिपोर्ट में।
अलगाववादियों के कश्मीर बंद कॉल के चलते आज कश्मीर का आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। कश्मीर में आज बंद कॉल के चलते सभी कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी प्रभावित रही। प्रशासन ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए श्रीनगर के डाउनटाउन के कई हिस्सों में आम लोगों के चलने फिरने पर प्रतिबंध लगाया था और सुरक्षा बलों को भारी संख्या में तैनात किया गया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौली उमर फारूक ने लोगों से श्रीनगर के ईदगाह तक मार्च करने की अपील की थी, ताहम मीरवाइज को कल से ही घर में नजरबंद रखा गया है और मार्च को नाकाम बना दिया गया है। मीरवाइज ने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रशासन की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध की कड़ी आलोचना की है। आज ही के दिन मीरवाइज मौली उमर फारूक के पिता मौली फारूक को वर्ष 1990 में कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी हत्या की थी और वर्ष 2002 में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन के पिता अब्दुल गनी लोन की भी आज ही के दिन हत्या की गई थी। कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार बशीर मंजर,
देखिए जहाँ तक आज की हड़ताल का ताल्लुक है, ये हर साल होता है 21 मई को कश्मीर में, क्योंकि 21 मई को दो मुख्तलिफ बरसों में दो टॉप लीडर्स मारे गए। एक तो मीरवाइज मोहम्मद फारूक, जो कि आज को जो मीरवाइज हैं उमर उनके वालिद थे, वो 1990 21 मई को मारे गए, और दूसरा अब्दुल गनी लोन वो 21 मई 2002 को मारे गए।
भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कल सोमवार को बताया है कि कश्मीर के युवाओं का हथियार उठाना सेना के लिए चिंता का विषय है।
लोकल रिक्रूटमेंट रिमेन्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस।
जनरल सिंह बता रहे थे कि स्थानीय युवाओं का हथियार उठाना हम सब के लिए चिंता का विषय है। सिंह के इस बयान पर बशीर मंजर कहते हैं,
ये सही बात है जो उन्होंने कहा, वो सही बात है, हम जानते हैं, हम कश्मीरी हैं, हमें पता है। आर्मी जनरल से ज्यादा हमें कंसर्न होना चाहिए कि हमारे बच्चे बंदूक क्यों उठा रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं पर्टिकुलरली 2016 के बाद से बहुत सारे कश्मीरी बच्चे बंदूक की तरफ माइल हो रहे हैं। इसके पीछे क्या है, इसको हर एक कश्मीरी को सोचने की जरूरत है। हमारे चीफ सिर्फ सरकार की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी देखना है कि उनके बच्चे बंदूक क्यों उठा रहे हैं।
हालांकि बाज विश्लेषकों का कहना है कि कश्मीर समस्या का राजनीतिक हल तलाश करने के बाद ही इस समस्या को एड्रेस किया जा सकता है। एक दशक से ज्यादा समय तक रिपोर्टिंग करने वाले और मीडिया स्टडीज के प्रोफेसर परवेज मजीद कहते हैं,
एक मुल्क के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए वो इशू होना चाहिए कि बराबर नौजवान और लोग सड़कों पे आते हैं, नारे लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, बेच बेचैनी का माहौल कायम है 30 साल से बराबर 3 दहाइयों से। ये सबसे बड़ा इशू है। मिलिटेंसी कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, इसमें यंग लोग किस एज, लोकल मकामी नौजवान किस उम्र के इसमें शामिल हो रहे हैं, वो इशू फंडामेंटली नहीं है। इशू यहाँ की अनाकी है, इशू यहाँ का अनरिजॉल्वड जो पॉलिटिकल इशू है वो है।
बीते साल सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ों में 250 से अधिक चरमपंथियों को मारने का दावा किया था। रिपोर्टों में बताया गया है कि जनवरी 2019 से अब तक कम से कम 85 चरमपंथी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में मारे गए हैं। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
और अब रुख छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के खिलाफ आदिवासी एकजुट हो रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आदिवासी हर दिन बैठकें कर रहे हैं। अब तक कम से कम 17 पंचायतों के आदिवासी 2 बड़ी बैठकें कर चुके हैं। आदिवासियों की मांग है कि उनके इलाके से सुरक्षा बलों को हटाया जाए और सुरक्षा बलों के नए कैंप स्थापित नहीं किए जाएं। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा सरकार द्वारा घोषित 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, जहां ग्राम सभा का निर्णय सर्वोपरि माना जाता है। अब इस इलाके में सुरक्षा बलों के नए कैंप खोले जाने के खिलाफ आदिवासी अपने अपने ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा करने की तैयारी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के विरोध की कार्रवाई इस महीने सुरक्षा बलों और संदिग्ध माओवादियों के बीच हुई एक कथित मुठभेड़ की घटना के बाद शुरू हुई। इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी का दावा है कि पुलिस अत्याचार के कारण ऐसे हालात बने हैं।
गोंडे राज पंचायत में एक मुठभेड़ दिखाया गया, जो कि वो भी फर्जी था। जब ये होने के बाद गांव में घुस के बुरी तरह गांव वाले को बहुत मारपीट की पुलिस, 30 लोग लगभग इतनी बुरी हाल मारपीट किया गया। तो वहाँ सवाल एक खड़ा हुआ कि आश्रम करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए।
सोनी सोरी का कहना है कि इसके बाद आदिवासियों ने ग्राम सभा की पहल की।
फिर वो चर्चा इतनी फैल गई, तब फिर 14 पंचायत के लोग इकट्ठा होके ये लोग ग्राम सभा की मांग करने लगे। मानवता के साथ इतना कुछ हो रहा है, हनन हो रहा है, हमारा जल जंगल जमीन छीनी जा रही है, हम लोगों को किस तरह से फर्जी नक्सल के नाम पे डाला जा रहा है, ये फिर ग्राम सभा के अंतर्गत में कभी क्यों नहीं लाया गया हमारी इन समस्या को।
दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि पुलिस थाना और कैंप खुलने से इलाके में विकास कार्यों को बढ़ावा मिला है। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के DIG सुंदर राज पी ने BBC से कहा,
विगत कुछ वर्षों में हम अंदरूनी इलाके में नए नए कैंप्स खोलकर अपना अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया। उन इलाके में जनता नक्सली के साथ छोड़कर प्रशासन शासन के साथ जुड़कर उन इलाके में विकास कार्य के लिए आगे बढ़कर काम कर रहा है।
DIG सुंदर राज का कहना है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई से घबराए हुए माओवादी नहीं चाहते कि उनके प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके में किसी भी स्थिति में सुरक्षा बलों की उपस्थिति दर्ज हो। यही कारण है कि वे गांव वालों को ढाल की तरह उपयोग कर रहे हैं।
यदि नया कैंप खुल जाएगा, उन इलाके में नक्सलियों का जो आतंक उनके कड़कम हो जाएगा, इसी को देखते हुए नक्सली में एक बौखलाहट है, उसी बातों को लेकर डर कर उन्होंने ग्राम सभा के माध्यम से जो नया कैंप का विरोध करने के लिए जनता को इंस्टिगेट कर रहे हैं।
लेकिन सुरक्षा बलों की कार्रवाई में आम आदिवासी को क्यों प्रताड़ित किया जाता है?
जो भी एंटी नक्सल ऑपरेशन हम लोग ने कंडक्ट करते हैं, इसके एकदम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। इसमें किसी प्रकार का मारपीट या किसी प्रकार का अट्रोसिटी का हमने कभी कोई टॉलरेट नहीं करेगा। इसके बावजूद भी कभी कभी यदि कोई इस विषय पर शिकायत आते हैं, हम पूरा गंभीरता से लेते हैं और उसमें उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं।
नक्सल विरोधी अभियान के DIG सुंदर राज पी के शब्द। पुलिस के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन मानवाधिकार संगठन PUCL के अध्यक्ष डॉक्टर लाखन सिंह आदिवासियों द्वारा बुलाई गई ग्राम सभा की पहल का स्वागत कर रहे हैं।
एक बहुत अच्छी पहल हुई है। पहली बार सुनाई दे रहा है कि वहाँ 5वीं अनुसूची पेशा कानून और फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की जा रही है। ये जो ग्राम सभाएं होती है उसमें ये बात कभी क्यों नहीं होती है कि पुलिस ने प्रताड़ना किया, लोगों को फर्जी मुठभेड़ मारा या पुलिस ने मारपीट किया।
आदिवासी अब ग्राम सभा की तैयारी में जुटे हैं और पुलिस अपने नए कैंप खोलने की तैयारी में। मतलब साफ है कि कोई भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में दंतेवाड़ा में पुलिस और आदिवासियों के बीच टकराव की स्थिति और तेज हो सकती है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
दिन भर शॉर्ट वेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
पिछले पिछले महीने श्रीलंका में होटलों और गिरजाघरों पर बम हमलों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हमलों के बाद की मुस्लिम विरोधी हिंसा थम तो गई है, लेकिन कई इलाकों में चिंता है कि एलटीटी के साथ लंबे गृह युद्ध बाद पहले आत्मघाती हमलों और उसके बाद की हिंसा के कारण देश के जटिल सामाजिक ताने बाने पर चोट पहुंची है। उत्तर पश्चिमी श्रीलंका से बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की रिपोर्ट।
राजधानी कोलंबो से 40 किलोमीटर दूर है प्रख्यात मिनुवनगोड़ा मस्जिद, जहां भीड़ के हमले के बाद की ये पहली जुमे की नमाज है। टूटी खिड़कियां, दरी पर बिखरे शीशे और पत्थर। 13 मई देर शाम का वाकया मस्जिद के सीसीटीवी फुटेज में कैद है। सुरक्षा बलों के आने से हमले थोड़े थमे, लेकिन पत्थरों की बरसात फिर शुरू हो गई। मोहम्मद नजीब इस मस्जिद के इमाम है।
ஏன்னா நான் அங்கே வரக்கூடிய நேரத்தில் எங்க ஊர் மக்களுடைய மக்களும் வந்து
இமாம் முகமது நஜீப் கே ரே தே கி ஜப் மே மஸ்ஜித் மே குசா தோ மேரா தில் டூட் கயா, யே மஸ்ஜித் அல்லாஹ் கா கர் ஹே, முஜே விஸ்வாஸ் நஹீ ஹோ ரஹா தா கி இஸ் பர் ஹம்லா ஹுவா ஹே. மஸ்ஜித் கே தீக் சாம்னே ஏக் பாஜார் ஹே. பிரத்யக்ஷ தர்ஷியோ கே முதாபிக் ஹம்லாவர் சின்ஹலா பௌத்த தே ஔர் உன்ஹோனே காடியோ சே டீசல் பெட்ரோல் நிகால் கர் यहां आग लगा दी।
They took some petrol from the bike and they threw inside the shops. Then only they only know that these are Muslim shops because it was
हमलावरों ने दुकानों पर पेट्रोल फेंका। उन्हें पता था कि कौन सी दुकानें मुसलमानों की हैं। हमले में सिन्हला बौद्ध परिवारों की भी दुकानें तबाह हुईं। कुछ किलोमीटर पर मोहम्मद सालीन फौसल अमीर का घर है। देर रात शोर सुनने पर जब वो बाहर निकले तो तलवारों से लैस हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी। सिन्हला बौद्ध बहुल जनसंख्या वाले श्रीलंका में करीब 10% मुसलमान हैं। पूर्व में मुसलमानों पर हमलों के लिए कट्टरपंथी सिन्हला बौद्धों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। कुछ जानकारों के मुताबिक प्रशासन के लिए कई चुनौतियों में से एक बोडू बल सेना या बीबीएस जैसे सिन्हला बौद्ध चरमपंथी गुट हैं। बीबीएस के दिलांथा विथानगा,
देयर इज अ ग्लोबल एजेंडा ऑफ इस्लामाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम and converting people into Islam.
दिलांथा विथानगा कह रहे थे कि दुनिया में इस्लामीकरण का एजेंडा चल रहा है, लोगों को मुसलमानों में परिवर्तित किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए भोले भाले मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। ये थे बीबीएस के दिलांथा विथानगा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिंसा की घटनाओं से सिन्हला बौद्ध और मुसलमानों के रिश्तों को गहरी चोट पहुंची है। अमान अशरफ का परिवार पहले राजनीति से जुड़ा था, लेकिन अब अलग हो गया है।
Recent incidents, the repercussions rather, which took place in Minuangoda.
अमान अशरफ कह रहे थे कि मिनुवनगोड़ा में हिंसा के अगले दिन सिन्हला लोगों ने अपने व्यवहार से संदेश दिया कि हिंसा को समाज में कहीं जगह नहीं मिलेगी। इससे मुझे भविष्य को लेकर उम्मीद बंधी है। ये थे अमान अशरफ। श्रीलंका में सड़कों, होटलों में हथियारबद्ध सैनिक तैनात हैं। लोगों को विश्वास है कि समुदायों के बीच मजबूत संबंध देश में अस्थिरता के किसी खतरे पर भारी पड़ेंगे। विनीत खरे, बीबीसी, कोलंबो, श्रीलंका।
और अब सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले विपक्षी दलों के एक समूह ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है और वोटों की गिनती को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। इंडोनेशिया में बीते महीने हुए चुनाव के आधिकारिक नतीजों में राष्ट्रपति जोको विडोडो फिर से निर्वाचित हुए हैं। तनाव की आशंका के चलते चुनाव आयोग ने तय तिथि से एक दिन पहले ही नतीजे घोषित कर दिए हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में एक मानवाधिकार समूह ने सेना के हाथों उत्पीड़न के कथित सैकड़ों मामलों की संयुक्त राष्ट्र से जांच करवाने की मांग की है। विद्रोह के आरोपों में मुकदमों का सामना कर रहे 5 कैटलन अलगाववादी नेताओं ने नवनिर्वाचित संसद सदस्य के तौर पर शपथ लेते हुए स्पेन के संविधान के प्रति निष्ठा जाहिर की है। संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि वो 7,000 प्रमुख विदेशी निवेशकों के देश में स्थायी निवास का अधिकार देगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे तिलक राज भाटिया, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।